संस्कृत का शब्द है
अभी से तो कुछ लग रही है।
मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे प्रश्न करने के लिए आई। पूछा वो क्या चुपचाप सुन रहे, आप लोगों ने सुना कृष्ण ने कहा जिसकी उनका काम कर रहा है पति की सेवा लग रहा हो क्या हो जैसा कि हो इनकी का पर धर्म है पति की सेवा। पाप कमाता है या नहीं कमाता लग रहा है बिता है कोई है जैसा कि स्त्रियों का पति की सेवा करना है उनका पति। इसलिए आप लोग घर में लौट जाए और आप लोगों ने सुना कि ये भी सुना रात भर चांदनी लगी सखा के पास में गया बोला इससे मुझे बड़ी भूख लगी जगह जल्दी कुछ खा नहीं पड़ा और वो बाजार से ले आया मिठाई। मैं भाई मेरे लिए क्यों ला रहे हो नहीं आपके लिए नहीं लाया किसके लिए लाया ठाकुर जी का भोग के लिए लाया छिपा करके यदि वो खाता है तो उसमें कुछ प्रवृत्ति है और स्पष्ट कर देता है प्रवृत्ति। इसलिए कृष्ण ने जो कहा उसके दो अर्थ है एक अर्थ है और एक आता है खर जाओ ऊपर से दिखता है खर जाओ गीता से आता है इस रूप में सामंजस्य करना। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने दोनों बातें की तो फिर इसका सामंजस्य राष्ट्र के पीछे से आ जब तकलीफ को तुमने लौटा किसी को नहीं ग्रहण किया जब पति इत्यादि जीतने भी कितनी भी लोगों को क्या लक्ष्मी को भी लौटा अभी तक वेद में तपस्या कर रहे उनको ग्रहण किया तो लोगों ने उनको निरुत्तर कर दिया। कैसे उन्होंने कहा जैसे आप मेरे गुरु गुरु की पूजा की जाइए तब किसी को इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे और जब नहीं स्वीकार करते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा। दूसरी बात आपका यह अपने कथन है आप कहते हैं कि मैं भगवान अच्छा तो मान लिया हमको नहीं विश्वास कर किंतु मान लिया तो आपने कहा है सर्वपति सर्वधर्मान प्रत्यजमान के हम शरण सब धर्म को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ तो हमको सब छोड़ करके आपके चरण में आए जब ग्रहण नहीं करते हैं तो इसका पाप भी आपके ऊपर मत से पता चलेगा। इस तरह से हमको निरुक्त कर दिया राष्ट्र गोपियां इसी तरह की नहीं है बहुत प्रकार की कृष्ण ऐसा किया से निकास नहीं होगा सतभामा रुक्मिणी को कौन प्रेम नहीं है कृष्ण से वहां रास नहीं लक्ष्मी जी को भी कम प्रीति नहीं है वहां रास नहीं होगा। मंडली बद्ध होगा नित्य कृत उल्लास के साथ में यदि हृदय का रस प्रकाशित होगा एक दूसरे के प्रति तब उसको रास कर कोटी कोटी गोलियां कृष्ण के साथ में नृत्य करने लगे। गोपी कृष्ण पाई कीर्तन करते हैं गान करते हैं और एक दूसरी गोपी उससे भी सुंदर रूप में पंचम स्वर में वो तीसरी गोपी उसी को ध्रुव रूप में दान करती है और वो आरोप के साथ एक गोपी और भी उसे सप्तम स्वर में ले जाती है कृष्ण कहते हैं साधु 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 इस प्रकार से रहा कृष्ण ने एक एक गोपी के बीच में एक एक रूप था और उनके हाथों में हाथ मिला करके नृत्य कर रहे उस प्रकार से एक मां के हाथ हो, बीच में उसके ढक्कन है, उसी प्रकार से ये रास मंडली में राधा कृष्ण बीच में रहे। और जब नृत्य होने लगा ऐसे खूबसूरती के साथ में नृत्य आरंभ किया, जैसे एक अंगारे को जलती हुई लकड़ी को लेकर के और ऐसे घुमाए तो मालूम होता है कि एक आग का शब्द बन गया। वो तो एक ही जगह आग है, घुमाए लकड़ी इसलिए ऐसे मालूम होता है। इसलिए कृष्ण ऐसे क्षिप्र गति से नृत्य किया जो जब राधिका जी देखती है गोपियों की तरफ तो उनके पास में, और जब अपने तरफ देखते हैं तो अपने पास में। गोपियों का सौभाग्य बन, सौभाग्य बन किसको कहते हैं, स्त्रियों के लिए सुहाग है जो पति उसके अनुकूल कार्य करता है। दुर्भाग्य स्त्री वो है जो पति उनकी बात को नहीं सुनता, और जब सब प्रकाश उनकी बातों को सुनने लगता है तो वो सुहागी है, स्त्रियों के लिए ही सुहाग है। उन स्त्रियों को ऐसा मालूम हुआ गोपियों को जो कृष्ण मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ में नृत्य कर रहे हैं वो देखेंगे। उस समय उनको यह सौभाग्य हुआ, सौभाग्य हुआ ये कृष्ण हमारे ही पशुभूत में हमारे रूप में आते हैं और किसी के नहीं, सबने अलग अलग इसी रूप में देखा, इसलिए उनको सौभाग्य मालूम हुआ। राधा जी बीच में उन्होंने देखा कि हमारे पास में नृत्य करता है, और जब उधर में नजर गई तो देखा उस गोपी के साथ, उस गोपी के साथ, उस गोपी के साथ, पकड़ के साथ नृत्य कर रहा है। इसलिए वो हो गया हाँ हाँ झूठा लगा है, झूठ है, कहा मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूँ, तो ये सबके साथ में वैसा ही प्यार हमारे साथ। पशु को हो गया हाँ अमान होकर के तुरंत रास्ते निकल। कृष्ण ने देखा सब कोटि गोपी, सब कोटि गोपियां, सब कोटि
इसने जरूर ईश्वर की अधिक से आराधना की।
जाती है जो ये कृष्ण की शान में गई है, अन्यथा जा नहीं सकती, इसलिए वो अत्यंत दुखित हो गई। और जो सफल की बात थी बड़ी प्रसन्न हो गई, किसी से कहा नहीं, वह आज हमारी सखी का ऐसा स्वभाव, मेरा स्वभाव है कि कृष्ण इसको लेकर अत्यंत ध्यान। इस प्रकार से जो दूसरे पक्षवादी वो बढ़िया मंत्र में होकर के पेड़ों से पूछ रही है, पौधों से पूछ रही है, तुलसी से पूछ रही है, ये सब का प्रसंग आपको इन सबको अलग अलग समझ करके समझने में तब ये अच्छी तरह से समझ जाए। लेकिन इस लोगों की व्याख्या बहुत दिनों तक की जा सकती है, तब ये अच्छी तरह से समझेगा। अभी आप लोगों को रोग उत्पन्न हो या ऐसी कथाएं हम सुने, फिर कभी हम लोग आएंगे, चेष्टा करेंगे जब उसको अच्छी तरह से हम लोग बढ़ने कर सकते। अब इस बात को करना चाहिए आपको संक्षेप में आगे। इस प्रकार गोपियों ने
स्वरूप है,
कृष्ण की राग्नि शक्ति स्वरूप है, सब लक्ष्मी मई है, इसलिए उनको सिद्ध होने की कभी जरूरत नहीं। जैसे कृष्ण को सिद्ध नहीं कहा जा सकता है, ऐसे योगी को भी नित्य सिद्धा नहीं कहा जाए। जो नित्य सिद्धा है माने किसी न किसी समय में वो सिद्ध हुई नहीं है, जिन्हें साधन किया है साधन के द्वारा सिद्ध है, किंतु नित्य सिद्ध है, अर्थात जीव तत्व है, वो साधन होकर के योगी भाव में सिद्धि लाभ किया है और नित्य है, कभी जगत में आई नहीं। वो लोग बेखट के, वो लोग भी उनके साथ में सब समय रहते हैं, इसलिए वो बेखट के होते हैं। उन दोनों लोगों के लिए जो माया जी ने ठीक वैसे ही उनकी गोपी बना करके घर में पतियों के पास में, सास सासुरी के पास में, माता पिता के पास में उनको ठीक उसी प्रकार से अविकल रख दिया है। जैसे कृष्ण कोटि-कोटि बालक बने हैं, बछड़े बने हैं, और उनका स्वभाव चरित्र रंग रूप सब कृष्ण ने धारण कर लिया है, ऐसे ही राधा जी ने ही जो माया ने उनका रूप बना करके और घरों में रख दिया, किसी को कोई संदेह न कि वो रास में गई और वो सब रास में गई, नित्य सिद्धा है। और जो अभी साधन सिद्धाएं हैं जिनकी बस स्वरूपता सिद्धि हो गई है और वस्तु सिद्धि भी हो गई है, गोपियों के गर्भ में जन्म भी ले लिया है, ऐसे भी गोपियां दो कोटि की हैं, दो रूप में है, दो विभक्त रूप में विभक्त, एक तो विवाह से पहले या विवाह के पीछे नित्य सिद्धा और काय स्वरूपा गोपियों का संग हो गया, और वो संग में उनके पितर में जो कषाय दोष था त्रुटि थी वो सब दूर हो गई, और पतियों के साथ में इनका कभी संगम नहीं है, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझते हैं प्रियत, और उनको नित्य सिद्धाओं के साथ में पतवार का विवाह स्वरूप गोपियों के साथ में संग हो गया है, इनके लिए भी कोई विघ्न बाधा नहीं, वो लोग भी चलिए जो मैंने इनके लिए भी व्यवस्था कर। अब साधन सिद्धा ने जैसे उपनिषद चली है, उपनिषदों ने साधन भजन किया, जैसे दंडकारण्य वाले 60,000 ऋषियों ने साधन भजन किया गोपाल मंत्रों का बैठने के लिए, इन लोगों में से जिन लोगों को संग हो गया नित्य सिद्धाओं का अथवा कायद्य वालों का, जो मैंने इनके लिए भी दरवाजे खोल दिए, ये लोग भी चले गए। और इनमें से अभी कुछ उतना भाव नहीं है, कुछ थोड़ी सी कषाय कषाय मैंने क्या रंग अभी पूरा भी नहीं चढ़ा है, अभी दो बार और रंग देने के कपड़ा सब साफ कर दिया, अभी गहरा चटकीला रंग अभी नहीं आया है, अनुराग रंग उनको और गहरा होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो दंडकारण्य निवासी थे, जनकपुर की जो ये सब महिलाएं थी राजकुमारियां, और उनकी शादी हो गई है, पतियों के साथ में उनका संग भी हो गया है, किसी किसी को क्वचित किसी को पुत्र भी संतान भी हो गई है, किंतु कृष्ण के प्रति प्रबल रूप में पूर्व राग भी है, अभिनित सिद्धाओं का भी पूरा संग नहीं मिला है, इसलिए कुछ थोड़ा सा बाकी है। बाकी क्या है, कल शिवानंद ब्रह्मचारी जी ने बताया, उसको फिर से समझ, वो दोष क्या है, एक दोष है कुछ शुभ है, जब तक हमारे पुण्य और पाप रहेंगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये दोनों बेड़ियां हैं, गोपियों को शुभ और अशुभ पाप पुण्य की कोई बेड़ी नहीं, वो तो पहले जन्म में ही वो सब दूर कर करके उसके बहुत ऊपर भाव, उसके बाद में प्रेम भी उनको आ गया, किंतु यह प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ है, पक भी गया है ना? पक गया है किंतु अभी कोमल हो गया है, उसमें से सुगंध आने लग गई और उसको देख करके किसी का मन लुब्ध हो जाए, कोयल बैठ जाएगी, अभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अभी थोड़ा सा पकने में पक भी गया है किंतु अभी थोड़ा सा भी और नरम कोमल होना चाहिए, उसमें सुगंध और मिठास और होंगे, उसको तोड़ करके घर में लेकर के घंटे करके पका रहे हैं, या ऊपर में ही वो पक रहा है, थोड़ी सी हवा चली और वो क्या होगा, अपने वृत्त से टपक जाएगा, उसमें अत्यंत अगुण अत्यंत अधिक माधुर्य हो जाता है। कभी माधुर्य सुगंध और ये सब चीजें नहीं आई है, इसलिए इसी को कसाय समझिए। इसी को दो प्रकार से व्यक्त किया, तीव्र विरह का, इतना विरह ताप हुआ कि जो कुछ कसाय था वो दूर हो गया। छिन्न मंगला, और एक है कि विरह तीव्रताप धुता सुखा, असुख दूर हो गया। गोपियों को इतना भजन करने बाद कोटि कोटि और उनको गोपी गृह से जन्म, अब अशुभ क्या रहा, कर्म जनित कोई अशुभ नहीं, ज्ञान जनित कोई भी अशुभ नहीं, यह अशुभ क्या है, अभी प्रेम के पकने में थोड़ी सी अभी कुछ अशुभ है। तो ये तीव्र विरह ताप से, जैसे कि ताप देने से अन्न पक जाता है ना, चाहे अन्न में घोल करके रखो या अंदर की ताप से, या जैसे बोरे में ठक करके रखो, उसको गर्मी चाहिए। तो ये विरह का तीव्र ताप ने क्या किया, अशुभ जो उसमें कुछ कमी थी उसको उसने पूरा, और जो सुख थे सुनना ने क्या, पति बहुत ही उनको प्यार करते हैं, सास सासुरी और घर वाले बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो ये प्यार करना भी बड़ा गड़बड़ी है। राजा मोर प्रीति करे ये लोग, संसार वाले लोग प्रेम करते हैं तो कृष्ण के भजन में वो लोग बाधा देंगे, प्यार करना माने तुम भी हमको प्यार करो, तो उनसे प्यार करो ना, भगवान से प्यार करो, तो भगवान का प्यार बढ़ जाएगा। यही बात हुई है महर्षियों में, सत्यभामा रुक्मिणी में, पहले उन पर कृष्ण पर अकेला प्यार था, पूर्ण रूप से शादी हो गई, तो फिर शादी होने के बाद में जब लड़के हो गए, एक लड़का हुआ, तो क्या हुआ, अब वो कृष्ण का प्रेम बट गया उस लड़के, एक लड़की हो गई, 10 लड़के हो गए और एक लड़की, तो 10 1 11 भाग और पति में 1 भाग और बराबर बराबर 12 भाग। सास ससुर की तो सेवा करनी पड़ेगी, तो देवर हैं और घर वाले हैं, माता पिता हैं, बंधु हैं, इन सब के प्रति भी प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए इनका प्रेम बढ़ जाता है। और गोपियों का प्रेम ठोस सॉलिड, न तो पतियों से संबंध है, न उनको पुत्र है, न वो ससुर ससुर को, सब कुछ वो संसार का भूल चुकी है, इसलिए इनका प्रेम एक ठोस है। इस प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। तो उनका मंगल क्या था, जो सभी लोग उनको आदर करते हैं, अब वो आदर करने गए कि भी प्रेती कुछ बची हुई है, ये जो वहां पर है ये कृष्ण को भीतर ले गई, अभी करके खूब जोरों से आलिंगन किया और उनका मंगल भी क्षीणोत्तम समाप्त। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है, हम बद्ध जीवों के लिए जैसे पाप है ना, वैसे पुण्य भी, बल्कि पाप से हम लोगों का जल्दी से छुटकारा मिल सकता है, किंतु पुण्य रूपी जो मंगल हुआ ना, वो जितने संसार की आसक्तियों के रूप में धन जन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा मिलने लगी, इससे छूट जाना पड़ा था। ये सोने की बेरी है और वो लोहे की बेरी है, दोनों को छोड़ना, उस जगत में भी प्रेम में भी जो अशुभ चीजें हैं उन सबको भी छोड़ना है, इसलिए उनके लिए विलंब है। जब ये दोनों बातें हुई, विरक्त प्रताप और कृष्ण को हृदय में लेकर के आलिंगन किया, उनका अभाव दूर हो गया, मरी नहीं, देह को त्याग कर दिया, उसमें लिखा है किंतु माने क्या, भाव को त्याग कर दिया। भाव को छोड़ना अधिक महत्वपूर्ण है ना शरीर को छोड़ना, हम लोग शरीर को छोड़ सकते हैं किंतु काम को छोड़ सकते हैं सर जी, यह छूटना बड़ा कठिन है, शरीर छोड़ देंगे, पीस खा लेंगे, रेल के नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, किंतु आसक्तियों को छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए यहाँ पर भाव जो है, भाव परिपक्वता में जो मधुर भाव में आने में कुछ असुविधा थी, उस भाव को छोड़ दिया, ये बात। शरीर यदि छोड़ दे मर जाती ना, तो राष्ट्र कैसे होता, वो अमंगल हो जाता, मरना तो अमंगल है, और उनको मरने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो तो सिद्ध हो गई, जन्मान से भी अतीत हो गई है, इसलिए शरीर को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग कथावाचक लोग ऐसा सुनाते हैं, किंतु ये सिद्धांत की रूप है वहां पर ऐसा। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, साथ साथ में राज समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में ब्रह्मा जी की आयु से कितनी रात लगी हुई वो सब समाप्त हो गई, ये घर में लौटी। जब घर में लौटी तो उसके लिए एक श्लोक लिखा है, फिर उनका संसार नहीं हुआ। मतलब क्या, संसार में न तो उनकी आसक्ति हुई और न संसार हुआ मैंने, अब जन्म मरण उनका दूर हो गया। क्यों, वो भी जन्म मरण वाली है ना, तो उनको संसार फिर होगा, तो ये क्यों आया। वहां पर ज्ञानी कर्मी योगी लोग बैठे थे, उन लोगों के लिए यह कर दिया उपलक्षण है, गोपियों के लिए ये नहीं। गोपियां तो प्रेम की पराकाष्ठा में है, उनको प्रेम की भी जरूरत नहीं, वो तो स्वाभाविक उनमें प्रेम है, इसलिए उनको कुछ सिद्धि सिद्धि नहीं करना है। इसलिए उनको संसार नहीं, वो यदि कहते हैं तो ये भूल है, संसार की जरूरत है, ऐसा नहीं। इसलिए गोपियों का संसार नहीं हुआ मैंने, यदि ऐसा कोई समझता है तो गोपियों के चरणों में अपराध करता है, इसलिए ऐसे इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। व्याख्या क्या होगी, दूसरों के लिए कर्मी योगी ज्ञानी बैठे उन लोगों के लिए, और यहाँ पर वो गोपियां राष्ट्रस्थली के बाद में अपने घर में भी नहीं गई, कहाँ रही, वृंदावन के कुंजों में रहने लगे। जब उद्धव आए तो इसको पता चला, गोपियां घर में उद्धव से नहीं मिली, वो कहाँ मिली, नंदगांव के वो उद्धव क्यारी रूपी कुंज में मिली, जहां पर उनको कोई देख ही नहीं सकता था, और उनके बदले जोग माया वाली जो गोपियां हैं जिसको बना दिया है उसके द्वारा करता काम इत्यादि, अब वो फिर रोटी नहीं पति के लिए बनाने लगी, इसका ये था वो पति के लिए दलिया नहीं बनाई, घर में अपने पति की सेवा नहीं कर रही, जैसे पहले ब्राह्मण को लिखा जी मनुष्य बजाया, तो ये सब लोग करते बैठे, इसलिए इनका सब ये जो था ये भी दूर हो गया, ये यहाँ पर दूर दार पड़ जाए। इसलिए ये नहीं अर्थ लगाना या समझना जो गोपियों का संसार है वो संसार से मुक्त हो गए, मायावादी लोग सब ऐसा ही अर्थ कर करके गोपियों के चरणों में अपराधी हो गए। इसलिए इस सब का विचार अच्छी तरह से समझ करके इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तीसरी बात सुभाष ने कल समझाया, गोपियां कृष्ण से प्रश्न किया, वो प्रश्न क्या है, प्रहेली का जानते हैं, पहेली पहेली बुझाना, तो गोपियों ने कृष्ण से पहेली बुझाई। जब विवाह होता है ना, तो जब पति अपने ससुर के घर में विवाह करने जाता है तो विवाह के बाद में उनसे पहेलियां पूछती हैं, तरह तरह की पहेली उसको तंग करती हैं, यहाँ तक कि पीढ़ी के नीचे मटर का दाना रख देंगी और उसे बैठिए आराम से, जहां बैठे तब तक तो वो चला गया, वो नीचे मटर का दाना है तो वो सर करके एकदम बहुत दूर चला गया, उसी में गिर पड़े, सब लोग ताली बजा करके हंसते, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये पहेली का बुझा रही है, पहेली बुझा रही है कृष्ण से, उत्तर चाह रही है, पहेली बुझाया। कल प्रीति करने वाले को कोई प्रीति करता है, कुछ ऐसे हैं जो प्रीति न भी करे तो भी उसको प्रीति करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो प्रीति करे तो भी प्रीति नहीं करते, तो जो प्रीति नहीं करते हैं उनको क्या प्रीति करें, इसलिए प्रीति करे ना करे उसको किसी को भी प्रीति नहीं करते। आप उछक्कड़ है जरा बुझाइए तो इसका क्या तात्पर्य है, ये पूछा पहेली का, इसका मतलब क्या है, आप उसमें से कौन है, ये नहीं ठीक इस तरह से नहीं, आप इस पहेली को जरा सुलझाइए। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, ये पहेली और कुछ नहीं, ये हमको पराजित करने के लिए, मैं अपने अपना अन्याय मैं स्वीकार करूं, मैंने दोष किया है, ये ऐसे नहीं पूछ करके उस रूप में पूछ रहे। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं इसका इस पहेली को मैं सुलझाता हूं, जो प्रीति के बदले प्रीति करते हैं उसमें धर्म नहीं है और उसमें सहुद भी प्रीति भी नहीं है। सुनो खूब अच्छी तरह से बैठो, हाथ छोड़ करके ध्यान से सुनने में बीच में पूछ दूंगा, कौन ये स्टैंड अप ऑन द बेंच, माइक नहीं सुनाई पड़ता, गबन हो जाता। कृष्ण ने कहा प्रीति करने वालों को जो प्रीति करते हैं इसमें न तो सौहृदय में प्रीति है और न कोई धर्म है, ये तो सीधा सीधी बनियागिरी है, दिया और लिया लेन देन का मामला है, इसमें धर्म है। तो मैं साथ धर्म का व्यापार नहीं करता, तुम प्रीति करोगे इसलिए मैं तुम्हें प्रीति करूंगा, ऐसी बात। दूसरा, प्रीति नहीं करने वालों को भी प्रीति करते हैं, इसमें धर्म है और सौहृदय भी। प्रीति नहीं कर पाए उसको प्रीति करे तब तो बहादुरी। लड़के बेटे और शिष्य लोग गुरु जी का आदर नहीं करते हैं और पुत्र और कन्या माता पिता की हो सकता है कि वो सेवा ना करें, प्रीति ना करें, किंतु पिता का और माता का और गुरु का स्नेह भी बढ़ता है, उनकी प्रीति रखती है। ये प्रीति दो प्रकार की है, ये भी बतलाया था। प्रीति दो प्रकार की, औपाधिक और निरुपाधिक। किसी प्रकार की कामना न रख करके गुरु या माता पिता अपने संतान पर, अपने शिष्यों पर जो कृपा करते हैं, स्नेह रखते हैं, ये निरुपाधिक प्रीति है। उपाधि कुछ नहीं, सकाम उपाधि, सकाम नहीं। अंधा है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं कर सकता तो भी उसको प्रीति करते हैं, इसलिए निरुपाधिक प्रीति। और सोपाधिक प्रीति, बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा हमारा पालन पोषण करेगा, या मर जाने के बाद में पारलोक की क्रिया करेगा और इसी से हमारा वंश चलेगा, इसलिए इसको प्रीति कर रहे हैं। यह सहायक प्रीति निर्बाधिक नहीं, यह उपाधिक। तो ये मैं इनमें से दोनों में कोई नहीं, इसमें तुम लोग कौन हो गया। मैं प्रीति नहीं कर रहा तभी तुम लोग प्रीति कर रहे, इसलिए तुम्हारे अंदर में धर्म भी है और प्रीति भी है। यथार्थ में तुम लोग धार्मिक भी हो और हमारे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है यह शुद्ध है, कैसे जैसे गुरुजन होता है माता पिता का पुत्र होता है, उसमें तुम लोगों का सहेतु नहीं है, औपाधिक नहीं है, निर्बाधिक तुम लोगों की प्रीति है, इसलिए तुम लोग श्रेष्ठ। दूसरे, मैं किंतु इन दोनों में नहीं है, न निरुपाधिक हूं न सोपाधिक। माता पिता और गुरु के समान ही मैं प्रीति नहीं करता, उनसे भी थोड़ा सा ऊपर अलौकिक और विचित्र रूप से करता, वो आगे बदला है। और जो प्रीति नहीं करता है, जो प्रीति करता है उसको भी प्रीति नहीं करते, वो चार प्रकार कौन कौन, आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इसमें आत्माराम, आत्माराम माने आत्मा में रमण करना, उनको संसार कहाँ है, क्या है, कौन माता पिता है, कौन गुरुजन है, ये उनको कोई भी बस कृष्ण में चित्त उनका लग रहा है, उनकी आत्मा कृष्ण में रमण कर रही है, ये आत्माराम। इनको होश नहीं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी है, इनको तन मन का संसार का कोई होश नहीं है, सब समय उनका चित्त भगवान में लगा वो समाधि में है सब, इसलिए वो कोई प्रीति करता है कि नहीं करता है वो देखते ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है, उनको प्रतिष्ठा से जरूरत नहीं, किसी चीज से जरूरत नहीं है, उनकी आत्मा में कृष्ण इतने आनंददायक है, पूर्ण आनंद युक्त है, उसी में रम रहा है उनकी सेवा में, और उनको संसार की क्या जरूरत है, इसलिए आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्माराम नहीं हूं, हम किसमें चित्त लगाएंगे, मैं आत्माराम, यदि आत्माराम रहता तो तुमको मैं बुलाता क्यों, बंशी से बुलाया ना, आत्माराम किसी को बुलाएगा, आत्माराम को भूख लगती है, कहते हैं जैसे मुझे मक्खन रोटी चाहिए, राधा जी पान की बीड़ी दे रही है, उनको जरूरत है किसी चीज की, उनको सुखदेव गोस्वामी को कोई जरूरत, किंतु हमको तो जरूरत है, इसलिए मैं आत्माराम नहीं हूँ, क्योंकि मैं बंसी में तुम लोगों को बुलाया और तुम लोग आ गए, तुमसे बातें किया मैंने, तुम लोगों के साथ में राश किया, तो आत्माराम कहा, और आत्मकाम, आत्मकाम भी नहीं हूं, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनको आत्मा, आत्मकाम शादी पूरी हुई नहीं, नहीं तो तुम लोगों को कहाँ बुलाता, तुमको मनाता क्यों, पकड़ाओ तो क्यों मनाता, यदि हमारी कामनाएं पूर्ण होती तो हाथों में हाथ लेकर के मैं नृत्य क्यों करता, ये राश क्यों किया, हमारे अंदर में कमी है ना, क्या कमी है, तुम्हारे प्रेम की कमी है हमारे अंदर, इसलिए मैं आत्मकाम भी नहीं हूं। अब रह गया अकृतज्ञ और गुरुद्रोहिता। अकृतज्ञ किसको कहते हैं, कृत क्यों, माता पिता गुरुजनों ने और हमारे प्रिय लोग व्यक्ति जो हमारे हैं उन लोगों ने हमारे प्रति जो कार्य किया है, कृत माने अच्छी भलाई परोपकार जो किया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें प्रीति करते हैं, इसको जानना, क्यों माने नहीं जानने का नाम है अकृत। कार्य सारे तुम अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता, तो माता पिता का हमारे ऊपर में क्या ऋण है, तो ऋण है तुम उनके घर पे रहा, उनको उन्होंने पालन पोषण किया है, तो किस लिए पालन पोषण किया, किस लिए जन्म दिया, जन्म उन्होंने दिया कि अपने आप को तो भोगों में लिप्त थे, मैं पैदा हो गया, इसमें उनका क्या एहसान है, समझ रहे नहीं, वो तो अपने सुख में लिप्त थे और मैं बीच से टपक आया, संतान के लिए थोड़े कुछ उन्होंने विवाह शादी की, पिछले किया अपने भोगों के लिए, तो वो भोग में लिप्त थे, मैं निकल आया उसमें से बीच में, तो ये क्या एहसान उनका हुआ, कोई एहसान नहीं, मैया जानबूझ करके अपने पेट के बच्चे को कुछ खिलाती पिलाती पोषण करती है, अरे वो तो प्रकृति से अपने आप हो जाता है, इसमें कैसा उनका ऋण है, इन सबका जो कार्य है परोपकार के, उनको इधर उधर टाल करके उसको नहीं मानने का नाम है अकृतज्ञ। कृष्ण कहता है कि मैं अकृतज्ञ भी नहीं, देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया, मैं अकृतज्ञ भी, फिर गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मैंने केवल अकृतज्ञ नहीं, उनके साथ में द्रोहाचरण करते हैं, कैसे द्रोहाचरण करते हैं, सहेतु और अहेतु, माता पिता वृद्ध हो गए और उनको हाथ की रोग हो गया, उनको सर्दी जुखाम हो गया, वो वृद्ध अवस्था में होती ही है, उनके लिए एक बाहर दरवाजे में घर से, तो उन्होंने घर को छोड़ दिया और बाहर में किसी आने जाने वाले रास्ते पर ही उनको दे दिया, पिताजी आप यहीं पर रहिए, धीरे धीरे उनका जो कुछ था सब कुछ ले लिया और घर भी दखल कर दिया, पिताजी अब तो आप लोग थे, अब मेरी नई शादी हो गई, पिताजी भी लज्जा के मारे में अपना घर किसको दे दिया, बेटे को और बहू को दे दिया, घर पहले उन्होंने दे दिया, इसके बाद में धीरे 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 रुपये पैसे जो कुछ था दायित्व तो सब कुछ उन्होंने दे दिया, अब वो घर के बाहर में वो कहेंगे अभी से वो निकल दो, ये धेतु हो गया, इसके प्रति द्रोहाचरण करने लगते हैं, अथवा और भी द्रोहाचरण के कारण हो सकते हैं, इसलिए सहेतु और निर्हेतु बिना किसी कारण के ही माता पिता गुरुजन को कष्ट देना उनकी अवज्ञा करना, ये दो इसलिए ये सब जा करके नौ प्रकार के हुए, मैं नौ प्रकार में से किसी प्रकार का नहीं हूँ, गोपियाँ कुछ जब आज कर दिया केवल अकृतज्ञ वाला रह गया तो सोचा कि इसमें जरूर फल देने पड़ेंगे, हम लोगों ने इनको प्यार किया, इन्होंने प्यार नहीं देते, ये अंत पर कुछ मिले नहीं आने तो अकृतज्ञ जरूर होंगे, तो कृष्ण उससे भी साथ निकल गए, उससे भी नहीं गए, देखो मैं इनमें कोई नहीं, तो आप कौन है, तो मैं ऐसा हूं, मैं तुम्हारे प्रेम की को आस्वादन करने के लिए मैं देख रहा था तुम्हारे हमारे प्रति में कैसा प्रेम है और संसार के लोग जाने, इसलिए मैं छिप गया था और तुम्हारे प्रेम को देख रहा था, देख करके प्रतीक्षण में आह्लादित और आनंदित हो रहा था, कोई कोई कहे जो गोपियों के प्रेम को पकाने के लिए मैं छिप गया था, अब जब वो पक जाएंगे तो फिर ऐसा साधन नहीं, ये लोग ने तो दिया है राधा जी के प्रति, हम लोग ललिता जी शारदा जी के प्रति अन्याय नहीं होगा, उनको प्रेम को पकाना है क्या, कृष्ण पकाएंगे ना कि कृष्ण को वो पका देंगे, ये उनको प्रेम को परिपक्व नहीं करना है, ये तो अनाधिकारी लोग बैठे हैं उनके लिए ये सब इस रूप में ऊपर से कर रहे हैं, किंतु भीतर से उनका ये काम कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? जैसे एक घर में नौकरानी है और उसके घर नौकरानी घर का काम खूब साफ सुथरा सब काम करती है। कुछ दिन के बाद में बहू आई, सास ने देखा, दो दिन देखा, चार दिन देखा, एक महीने देखा, दो महीने तक देखा, वो कुछ नहीं पलंग पर तोड़ती रहती है। पलंग तोड़ना जानते हैं? पलंग तोड़ती है, 8 बजे 9 बजे उठती है और इसके बाद में नित्य क्रिया कोई नहीं, सवेरे देखा देख रही है, चाय का प्याला आ गया वहीं पर जूठा पड़ा हुआ है, सवेरे से शाम तक कोई दूसरा उठा और सास बंद हो गई। तो जिसको कैसे शिक्षा दे, तो वो शिक्षा कैसे देती है? वो जो नौकरानी है ना, हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा, तू 8 बजे 9 बजे आएगी सो करके उठी है राजरानी जैसा, ये सब नहीं चलेगा। यदि तू कल से देरी की काम में गड़बड़ी हुई, पलंग थोड़ा यदि देखो ये झाड़ू तुम्हारे पीठ पर टूटेगी, मैं कह देती हूँ घर में नहीं रहने देंगे। अब नौकरानी थी बड़ी दुखी, दुखी होकर के एकांत को मिली मालकिनी से, मालकिनी मैं तो जी पर परेशान था, हमको आपने इस प्रकार कहा, तुम्हारे लिए कहा थोड़े, तुम्हारे लिए नहीं कहा, तुम तो दिन भर परिश्रम करते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आप कुछ पढ़ते उसे कुछ को दे दिया, मैंने अपनी बहुत कुछ सिखा रही है, अभी नहीं आई है ना, कुछ लोग जानती नहीं उसको कुछ। ऐसे ही वहाँ पर और जो है परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और श्रोता लोग उसमें बहुत प्रकार के लोग हैं, अनाधिकारी लोग भी हैं, अधिकारी लोग भी हैं, अधिकारियों के लिए नहीं अनाधिकारियों के लिए वो कह रहे हैं। इस प्रकार से गोकुल को प्रेम में पकाना है, अपक्व है दादाजी, अपक्व है, नहीं तो कृष्ण जी को वो कैसे सिखला देंगे? उनकी गुरु जी भी शाखा जी हैं, महाप्रभु के रूप में जब आए तो उनके यहाँ भीख मांगे कि हमको भाई तेरा पढ़ा लिखा दो प्रेम का पाठ। जब प्रेम का पाठ पढ़ाया, राधा जी के भावों को बतलाया, तो फिर वो गंभीरा में आकर के जगन्नाथपुरी में सारा शास्त्र किया। उनके पास में दो ट्यूटर लगे हुए हैं कृष्ण के पास में, एक इधर में एक इधर बाजी में, कौन? एक ललिता जी, एक विशाखा जी, एक स्वरूप दामोदर जी और एक दोनों उनको ट्यूटर हैं, उनको सिखला रहे हैं और देख रहे हैं कि अपने पार्ट में गड़बड़ न कर दें, इसलिए बीच बीच में उनको सावधान कर दिया। तो बताओ तो वो गोपियों को क्या करता, इसलिए मैं छिप गया था कि इसलिए तुम्हारे प्रेम को परिपक्व नहीं हो तो सुखदेव गोस्वामी ने दूसरों के लिए कर, इसलिए यहाँ पर यह तात्पर्य होगा कि गोपियों से प्रेम को देखने के लिए इसी समय में उनको बोध होता है, आप कितना मुझे प्यार करते हैं, हमारे प्रति कितना पितृलम्ब भाव है, ये निश्चित करके देखेंगे। जगत के लोग समझें, आज मैं जगत में प्रकाश करूंगा इन चीजों को, मैं सुखदेव गोस्वामी के हृदय में प्रेरणा देकर के, व्यास जी के हृदय में प्रेरणा देकर के, अभी सभी चीजें उनको दिखला करके जगत में भावुक के रूप में स्थान देते हैं, इसलिए मैं छिप गया तुम्हारे भावों को देखने के लिए। यानी गोपियों मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम हमारे प्रति ऐसा देश मत करना, नपारे हम निर्वर्त संयुजान सुसा विकृत्या विविधा दिशा दिवा मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संदृश्य तत्वा प्रतिजाशा। ओ गोपियों आपका जो प्रेम है बहुत निर्मल है, इसमें कोई भी दाग नहीं है, मैं इस प्रेम को छुपाने में असमर्थ हूँ, देता हूँ जैसे लंबी कोटि कोटि वर्षों की आदि आई पाऊं तुम्हारे मन को नहीं छुपा। गोपियों ने कहा जैसे चुका लो, आप बताते हैं कि मैं भगवान हूँ तो भगवान के लिए अदेश क्या चीज है, उसके लिए ऋण क्या है, तो ऋण चुका लो हमारे प्रति, अजय कैसे चुकाओ? यदि कहूंगा जब तुम कुछ मांग लो तो तुम मांगेंगे ये तुम्हारी सेवा चाहिए, तो अब यदि सेवा करने के लिए यदि हमने दे दिया तुम अपनी सेवा, तो मैं उसका और कसूंगा ऋणी हो जाता। दूसरी बात, तुम एक निष्ठ हो, मैं बहुनिष्ठ हूँ, हमारा प्रेम सब जगह बता, मैं किसी भक्त को नहीं छोड़ सकता, और तुमने संसार में केंद्रीय पुत्र धन जन पुत्र परिवार आशक्ति जो कुछ है सब कुछ तुम नहीं छोड़ सकते, एकमात्र हमारे अंदर में तुम्हारा प्रेम, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं राधा जी को छोड़ करके विशाखा जी को मान लू ना, विशाखा जी को मान करके ललिता जी को प्यार करूँ ना, उनको छोड़कर चंद्रावली को छोड़ दू ना, उद्धव जी को छोड़ दू ना, सत्यभामा रुक्मिणी को ना, हनुमान जी को छोड़ दू, किसको छोड़ना, प्रहलाद महाराज जी को छोड़ दू,
ना ही अभी हमको जो पुकार रहे हैं ना अभी हम लोग आप लोग हैं, आप लोग उनको पुकार रहे हैं कृष्ण के लिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको किसी को छोड़ सकते हैं? उनकी तो प्रतिज्ञा है जो जैसे हमारा भजन करता है मैं भी उनका भजन करता हूँ, आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक जो नहीं कर रहे हैं ना, किसी देवता दूसरे देवता देवियों की पूजा करते हैं न, किसी किसी रूप में देवताओं में भी उनकी शक्ति है तो उनकी पूजा हो जाती है, किंतु अभी भी पूर्वक जरा हो जाती है, वो किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही नहीं जीता सकता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरकारी नहीं बन गया। गोपियां ने कहा जैसे देखिए हम जीत करके भी हार गए, क्यों? आपने स्वयं ही यह हार आपने स्वीकार कर ली, पराजय स्वीकार करना साधारण बात नहीं है, पराजय स्वीकार करने पर उसी की जीत हो जाती है। इसलिए कृष्ण इतने महान होते हुए भी प्रेम को परख करके कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम का मैं ऋणी हो गया। इसलिए गोपियां कहती हैं आज हम लोग भी इस हार जो आपने स्वीकार कर दी इसके लिए हम आपके लिए ऋणी बनते, इसलिए आपकी जीत। इस प्रकार से रासलीला में ये सब चीजें, इस रासलीला को यदि कोई श्रवण करे तो क्या फल होगा? पहले कहते हैं कि देखो खबरदार आचरण न करना, श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, समझ रहे हैं ना, श्रद्धापूर्वक श्रवण और चिंतन करना इस लीला का, खबरदार। और जो व्यक्ति बिना शिव कला के लिए बीस मिनट पान करने से, बीस पान करने से मर जाएगा, जल जाएगा वो, उसी प्रकार से इसका आचरण मत करो। एक प्रेमिका रख ली, दो प्रेमिका रख ली, तीन प्रेमिका रख ली, उसके साथ में प्यार करके चलेंगे सर्वनाश होना है, ऐसे मत जाओ। श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो। श्रवण करने से अनुश्रिया अनुश्रियात्मा लिया, गुरु जी से सुनो जो इसके अधिकारी हैं, जिनके अनर्थ दूर हो चुके हैं, और सुनो कैसे निरंतर उनके अनुगत में सुनो। समस्त चित्त की वासनाओं को छोड़ो, तुम छोड़ने पर भी नहीं छूटेगी, क्योंकि जैसे जैसे हरि कथा उसके हृदय में चलती चलती चली जाएगी, भक्ति उतने ही बढ़ती चली जाएगी, और अपने आप काम रोग तक भी सब दूर हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुना, आचरण मत करना, खबरदार। गोपने से अत्याचार बोरे भरे चुरी, आज का राधा कुंड वृंदावन में देखते हैं, कहना तो नहीं चाहिए किंतु सावधानी के लिए कह देता हूँ, आप लोग सावधान रहेंगे। बहुत से बड़े बड़े नामी बाबा जी लोग भजन कर रहे हैं किंतु अधिकारी नहीं होने की वजह से इन लीलाओं का आचरण करने लगते हैं, बहुत सी प्रेमिकाएं मिल जाती हैं उनको, प्रेम करने लगते हैं और दूर करते रसातल में चले जाते, ऊपर से बाबा जी बनते हैं। इसलिए सदगुरु के आश्रय में श्रद्धापूर्वक निरंतर दीक्षित होकर के इन सब चीजों को समझ बूझ करके प्रति के साथ में उसको चिंतन करना और उन लीलाओं का कीर्तन करना या स्मरण करना अनुष्ठ निरंतर करो, तो होगा क्या धीरे 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 तुम्हारे हृदय में कथाओं के रूप में भगवान प्रवेश करेंगे, और भगवान के प्रवेश करने से मन अपने आप खुल गया, जैसे सरद ऋतु आई और जितनी जमुना नदी का पानी, गंगा का पानी, सरोवर का, तालाब का, कुंडों का पानी अपने आप निर्मल हो जाता है, फिटिक्र नहीं देना पड़ता। जमुना में फिटिक्र देकर के उसका पानी निर्मल करेंगे? इसलिए शरद ऋतु आने पर अपने आप हो जाता है, इसलिए शरद ऋतु कृष्ण जब हृदय में जब जाएंगे अपने आप अनर्थ सब दूर हो जाएंगे। अंधकार को रात में आप दूर करना चाहते हैं, हर कहीं जलाया पेट्रोमैक्स जलाया, 1000 कैंडल की बिजली भी जला दी, 1000 बल्ब जला दिए, सूर्य को देख लेंगे या पृथ्वी का अंधकार आप मिटा लेंगे, ये सब नहीं हुआ। हृदय का अंधकार को मिटा देंगे सूर्य के रोशनी के द्वारा भी, ये इसलिए हर कथा रूपी सूर्य के द्वारा कृष्ण स्वयं हृदय में जाकर के उसकी मलिनता को, काम रोग को भी सबको दूर कर देते हैं और वो शुद्ध निर्मल कर। इसलिए इस रासलीला का आचरण मत करना, ध्यान में भी कल्पना कर भी मत करना। महाप्रभु ने कहा नंगी स्त्री का चित्र भी मत देखो, लकड़ी की पुत्री भी मत देखो, स्त्रियां भी विश्व में न देखे, नंगे स्नान मत करो, ये सम्मान किया। मां चैतन्य महाप्रभु जी ने एक छोटा सा लड़का था उनके साथ में दक्षिण प्रदेश में गया, उसका नाम था कृष्णदास, काला कृष्णदास। वो 12-14 या 15 वर्ष का लड़का था, 16 वर्ष का। महाप्रभु के परिकरों ने कहा नित्यानंद प्रभु साधुओं भट्टाचार्य और लोगों ने हम लोग को ले जाने से आपको ये डर लगता है, वो कहेगा जी हमको नहीं लगे, वो कहेगा जी हमको नहीं लगे, हम सब ये वही हो गए, इसलिए उसमें डर नहीं। इसलिए आप निर्देश एक लड़के को साथ में ले जाइए, क्योंकि आपको तो होश नहीं रहेगा, आपको कृष्णा 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 रत्नान कृष्णा 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 पाहिना राम राघव राम राघव राम राघव रक्षना कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिना। आपके एकदम भाव की धूल हो जाएगी। उस समय में आपका ये कमंडलू और डोर कॉपिंग कौन रखेगा, आपको पीछा करके कौन खिलाएगा, आपको तो दिन रात होश नहीं रहेगा। इसलिए एक आदमी की जरूरत है, ब्राह्मण का लड़का है, बड़ा सदाचारी है, उसको साथ ले गए। रामेश्वर तक उसको साथ ले गए और फिर लेकर गया, क्योंकि बीच में एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में बंजारे होते हैं ना, बंजारा माने खत द्वार नहीं होता, बस नजर कहां से लड़की लड़के एकत्र कर लेते हैं और लोगों को लुभा करके अपने पास में रखते हैं, रात में चोरी डकैती कर देते हैं और दिन में साधु सज्जन बन करके लोगों को घर में भिक्षा के बहाने रास्ते घाट सब देखाते हैं, खुश ला लेते हैं लड़कियों को दिखला करके। उनका यही काम है बंजारों का। तो वहां बंजारों का एक दल बैठा था, महाप्रभु जी पास में कहीं पर एक पेड़ के नीचे ठहर गए, ठहर गया। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी भिक्षा लेकर के आता हूँ। महाप्रभु जी चले गए भिक्षा के लिए। जब लौट करके आप देखा जी वो है नहीं, बहुत खोज किया कहीं नहीं मिला। उन्होंने क्या किया था, बट उन लोगों ने उनको फट्टा खारी भी करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, एक सुंदरी लड़की दिखला करके उसको और उसके द्वारा कुछ लाड लेकर के अपने कैंप में रख दिया। कहे खबरदार उसके साथ साधु के पास में मत जाना, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा, न शादी होगी न कुछ होगा, हमारे साथ में अच्छा अच्छा खाएगा पिएगा, बाल बच्चे होंगे, बड़े आराम के साथ में हम लोगों का जैसा जीवन, आज यहाँ देखेंगे कल वहां जाएंगे कहीं परसों जाएंगे, हरी सब्जी हरी बगीचा दिखला देगा। वो उसमें लुप्त हो गया। देखा जब बिना पैसे के ही हमारी शादी हो गई, लड़की थी बड़ी बड़ी सुंदरी मिल गई, बस वहां पर चला गया। महाप्रभु आकर के घूमने लगे कहीं नहीं, देखा जी कहाँ गया, अरे इन लोग के कंठ में थी, उसको छिपा कर कर इनके भीतर में जब जाने लगे, कहाँ जा रहे तुम कौन हो, अरे हमारा एक लड़का तुम लोगों ने छिपा रखा है, हमारा वो सेवक था, तुम्हारा कैसा लड़का, वो तो हमारा लड़का, हमारा वो जमाई है। अब लड़ने लगे झगड़ने लगे, तो महाप्रभु जी ने ऐसे जोग माया महामाया की रचना की, जो परस्पर लड़ने बेड़ने में लग गए और इनका ध्यान नहीं, वो जाकर के उसके सिर के केस खींच करके और उसको बाहर कर गए और ये लड़ सकने लगे। महाप्रभु की शक्ति थी उसको पकड़ कर, उसने तो कुछ नहीं था। फिर जब लौट करके आए तब क्या किया, उसको कहा सब दामोदर जी को राय राम, अब इस बच्चे को हमारे यहाँ से बुलाइए, ये बच्चा हमारे पास रहने लगे। अरे स्वयं भगवान उसकी बुद्धि को नहीं पलट सकते थे, रख सकते थे कि नहीं, तो उनकी इतनी भी दया नहीं हुई, इतने दिन तक सेवा की उसकी बुद्धि को पलटने। प्रभु किसी के स्वतंत्र स्वतंत्रता के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करते, गुरु भी नहीं करता। आओ भजन करो जब देखेंगे इतनी सी इच्छा संपूर्ण रूप से उसके तरफ में हजार पैर दौड़ जाए, अगर देखेगा कि ये इसका अंदर में ना ताने लगा, ये भजन नहीं करेगा, समझाने पर भी नहीं करता है, तो पैर से लेकर के ऐसा थोड़ा सा जाओ अभी कुछ दिन जरा वो करते रहो। क्यों करते हैं, अब वही समझे जिसने क्या उसको बात। छोटा हरिदास का नाम सुना है, महाप्रभु का कितना कीर्तन करता था, बस महाप्रभु जी के भजन करने के लिए वो थोड़ा सा चावल मांगने गया और मांग करके जब लाया, किसके यहाँ, माधवी देवी, कौन, महाप्रभु जी के साढ़े तीन जनों में से एक है, इतनी भगवत भक्त है, उनके यहाँ से मांग करते रहे। महाप्रभु जी ने कहा जी कहाँ से चावल आया इतना सुंदर तारीख, माधवी जी के यहाँ से आया। अच्छा कौन लाया, छोटे हरिदास, उस समय युवक थे 20-22 वर्ष के, बहुत सुंदर मधुर रूप से कीर्तन करते थे। महाप्रभु जी आज से बात करते कभी भी हमारे सामने नहीं आने पाए, हमारी स्कूटी के अंदर में नहीं आने पाए, दूर गए, उसका मुख में दर्शन नहीं कर पाया, क्षण से त्याग करके बाबा जी बना हुआ व्यक्ति और फिर स्त्रियों से बातचीत करने के लिए उनके पास में जाता है, चावल मांगने के बाद अपने जीवन भर के लिए। सब लोगों ने महाप्रभु जी को मनाया, महाप्रभु ने जाओ अब यहाँ नहीं आना है, चलो आलाना, फिर उनके चरण में लोग
नहीं इतनी कठोर। अंत में वो प्रयाग में जाकर के शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु जी ने कहा ऐसे लोगों की ऐसी गति होती है। और फिर वो तो बड़का था, उसका तो दोस्त था नहीं, उसके बहाने दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे नौकरानी के बदले बहू को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे सब जीव हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। भजन के नाम पर तुम स्त्रियों से खुले खुले बातचीत करेगा, उसे प्रेम करेगा, ये भजन का महाप्रभु जी ने सदा के लिए उसको प्रकट किया। वो क्या करते गंगा जमुना के संगम में प्रयाग में जाकर के शरीर छोड़ दिया। फिर वो आकर के महाप्रभु समुद्र के में हवा के रूप में अपनी आत्मा के द्वारा में महाप्रभु जी को संगीत सुनाया करता। महाप्रभु जी को लोगों ने बताया कि वहां पर वो छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आप लोग मधुर संगीत सुना। महाप्रभु जी ऐसे ही कठोर है, हम लोग को साधन भजन भी ऐसे कठोर रूप में करना होगा, नहीं भजन की शुद्धि नहीं होगी, उसमें हम संपूर्ण रूप से नहीं दे सकते। इसलिए ये सब चीजें कैसे दूर होगी, नित्य इन सब लीला कथाओं का श्रवण करते हुए महाप्रभु जी की करुणा की कथाएं सुन करके नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी संतानंद राय रामानंद उनके ये सब विचारों को लेकर के चलेंगे तब भागवत समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मैं सुनता हूँ कि कभी महाप्रभु जी के लीला कथाओं का हम लोग रसास्वादन तब ये सब भागवत कि गुण जो रहस्य है ये समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएगा। इसे खूब श्रद्धापूर्वक सुनना है कि मन के द्वारा भी उनको आचरण नहीं करना है, नहीं तो ये सब प्रभाव। अब आगे की कथा आप लोग शुभानंद ब्रह्मचारी जी से सुनिए, फिर समय पर मैं कुछ बहुत प्रणानंदे बोलिए।